Red FM Hidden Files 4.0 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ।
मैं एक दिन शाम को वॉक कर रहा था कि मुझे मेरे दोस्त सुप्रीतम का फोन आया। सुप्रीतम एडवोकेट हैं और मुंबई में रहते हैं। फोन उठाते ही उसने कहा,
कर्नाटका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कोई केस है, तुम्हारी हेल्प चाहते हैं।
मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हें तो पता है कि कॉर्पोरेट केसेस में इन्वेस्टिगेट नहीं करता।
अरे मेरा दोस्त है और मेरा क्लाइंट भी, प्लीज एक बार मिल लो।
मैंने कहा, कहाँ फंसा रहे हो यार, ये कॉर्पोरेट फ्रॉड भी ना बड़े पॉलिटिकल होते हैं। सुप्रीतम ने सीरियस होते हुए कहा,
नहीं ये पॉलिटिकल नहीं है, कोई उसे परेशान कर रहा है सोशल मीडिया पर।
थोड़ा अजीब था, एक इतनी बड़ी कंपनी को कौन सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है मेरी बात करा दो। मेरे हाँ कहते ही सुप्रीतम ने उस कंपनी के CEO मुकेश शाह को लाइन पर ले लिया। मुकेश शाह ने फोन पर कहा,
क्या हम कल दिल्ली में कहीं मिल सकते हैं? बहुत क्रिटिकल मैटर है और हमें पता है कि आप ही मदद कर सकते हैं।
मुझे पता था कि नोएडा से दिल्ली मीटिंग जाने का मतलब अपने आधे दिन के सारे एंगेजमेंट कैंसिल करना। फिर भी कुछ सोचते हुए मैंने हाँ कर दी। मैं जब दिल्ली के होटल पहुंचा तो मुकेश शाह होटल की लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे हेलो का आंसर उन्होंने कॉफी की पेशकश करके दिया। मैंने कहा, मामला क्या है?
देखिए, ये हमारी और कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, कोई है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है।
मैंने पूछा, कब से? तो जवाब आया,
करीब 6 महीने से उसने सोशल मीडिया पर कई सारे हैंडल बनाए हुए हैं, 2 न्यूज पोर्टल्स भी हैं जिसपे लगातार हमारी कंपनी के अगेंस्ट न्यूज डालता रहता है।
मैं समझ नहीं पाया कि क्या न्यूज डालता है। मुकेश जी ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन मेरी ओर घुमा दी। 10,000 करोड़ स्कैम YZBZ लिमिटेड। मैं न्यूज देखते ही चौंक गया। 10,000 करोड़ का स्कैम, ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं था। मैंने न्यूज देखना शुरू किया तो उस न्यूज में कई सारे डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट एज एन एविडेंस भी लगाए गए थे। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, मुकेश जी ने कहना शुरू किया,
ही एक्ट्स लाइक अ विसल ब्लोअर और सब कुछ फेक, ना उसकी न्यूज में कोई सच्चाई है ना ही उसकी कोई रियल आइडेंटिटी है।
मुकेश जी आगे बोलते रहे,
वो 2 वेबसाइट्स के थ्रू ऑपरेट करता है, fraudexposure.com और fraudnews.com। इन पोर्टल्स में अदर न्यूज के अलावा हमारी न्यूज ही चलती है।
मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है?
पता नहीं, क्योंकि उसकी ना हमारे पास कोई आइडेंटिटी है ना उसने अभी तक हमें कॉन्टेक्ट किया है, पर उसके इस प्रोपेगेंडा की वजह से RBI ने हमारे अकाउंट सीज कर दिए हैं और हम पर ऑडिट अनाउंस कर दिया है। अब जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, वी कांट डू एनी बिजनेस। इस वजह से हमारा शेयर प्राइस भी गिर रहा है, शायद वो हमें प्रेशर में लाना चाहता है, या हो सकता है ये हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो।
मैंने पूछा, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं?
देखिए, हम चाहते हैं कि आप ये पता करें कि इसके पीछे कौन लोग हैं। हमें डर है कि हमारी कंपनी से भी कोई उनका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है।
मैंने बोला, आपको किसी पर भी शक है? मुकेश जी ने बोला, यही तो प्रॉब्लम है, शक तो लगभग सब पर है, पर शक से क्या होता है? मैंने कहा, अगर आपको ये पता भी चल जाए कि इसके पीछे कौन लोग हैं तो आप क्या करेंगे?
हम RBI को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे पाएंगे और मार्केटिंग सेंटिमेंट्स भी ठीक कर सकते हैं। वैसे भी अमित, देखो, अगर ये लोग सही होते तो इन्हें छुपने की क्या जरूरत है?
मैंने पूछा, आपने पुलिस में कंप्लेंट की?
हाँ, हम ऑलरेडी कर्नाटका पुलिस में कंप्लेंट कर चुके हैं, उन्होंने कुछ जानकारी निकाली है, पर वो अभी तक इन लोगों की रियल आइडेंटिटी ट्रेस नहीं कर पाए। क्या आप कर पाएंगे?
मैंने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि क्रिमिनल कितना होशियार है। आप मुझे सारी डिटेल्स ईमेल कर दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। घर आके मैंने चेक करना शुरू किया तो देखा कि कंपनी के शेयर ऑलरेडी 25% गिर चुके थे। दोनों वेबसाइट्स fraudexposure.com और allfraudnews.com के होस्टिंग डिटेल्स चेक करने पर पता पड़ा कि ये दोनों वेबसाइट किसी ऑस्ट्रेलिया के एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड डिटेल्स चेक करने पर मुझे एक ईमेल आईडी मिला, kim270133@gmail.com। जीमेल आईडी पर मैंने फॉरगेट पासवर्ड ट्राई किया तो इससे लिंक्ड जो मोबाइल नंबर था उसकी लास्ट की 2 डिजिट मिल गई। वो डिजिट थी 6 और 1। फिर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट और हैंडल्स एनालाइज करना शुरू किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जो हैंडल्स क्रिएट किए गए थे उनमें फॉरगेट पासवर्ड ट्राई करने पर उनसे लिंक्ड ईमेल आईडी मिले। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तो कोई प्रोटॉन मेल का ईमेल था जो कि लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए यूज करते हैं, पर फेसबुक से लिंक्ड जो ईमेल था उसके लास्ट के दो कैरेक्टर्स 33 थे। इससे लगा कि वेबसाइट रजिस्टर करने वाला ईमेल आईडी और फेसबुक हैंडल्स क्रिएट करने वाला ईमेल आईडी एक ही का हो सकता है, क्योंकि दोनों ईमेल आईडी की लास्ट की दो डिजिट 33 ही थी। सोशल मीडिया हैंडल से सिर्फ इस कंपनी के बारे में ही पोस्ट किए गए थे, कुछ भी और पोस्ट नहीं। 91 सीआरपीसी की एक रिक्वेस्ट गूगल को भेजी गई। 91 सीआरपीसी वो पावर है जिसके तहत पुलिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी यूजर के बारे में या ईमेल यूजर के बारे में उसकी सारी लॉगिन डिटेल्स मांग सकती है कि वो इसको कहां से ऑपरेट करता है। इस कहानी में जो किम 270133 ईमेल था उस ईमेल से संबंधित सारी जानकारी गूगल से मांगी गई और यह भी पूछा गया कि इससे कनेक्टेड कोई भी सेकेंडरी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है तो वो भी बताइए। 91 सीआरपीसी की एक रिक्वेस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी भेजी गई ताकि हमें क्रिमिनल्स के लॉगिन आईपी एड्रेसेस, ब्राउजर हिस्ट्री और उनकी लोकेशन डिटेल्स मिल जाएं। गूगल से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो जवाब आए उन्होंने हमें चौंका दिया था। जीमेल से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर था जिसकी की लास्ट की दो डिजिट 6 और 1 थी वो दरअसल मालदीव का नंबर था। जीमेल और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो आईपी एड्रेसेस आए उनसे यही दिख रहा था कि ये अकाउंट नीदरलैंड से ऑपरेट हो रहे हैं। संभावना ये भी थी कि कोई वीपीएन यूज करके नीदरलैंड के आईपी से इंडिया में ही बैठ के ये अकाउंट्स ऑपरेट कर रहा हो। कुल मिला के क्रिमिनल्स बहुत शातिर थे, उन्होंने ऐसी कोई जानकारी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ी थी जिससे हम उन तक पहुंच सके। मैं बार बार सोशल मीडिया अकाउंट्स को एनालाइज कर रहा था पर उसमें कुछ मिल नहीं रहा था। तभी मैंने एक चीज नोटिस की कि क्रिमिनल्स ने जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसे कुछ लोगों ने लाइक और रिट्वीट भी किया था। अब मैंने उन अकाउंट्स को एनालाइज करना शुरू किया जो कि क्रिमिनल्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को शेयर कर रहे थे या उन्हें लाइक कर रहे थे। थोड़ा गहराई से एनालिसिस करने पर मुझे कुछ दिखना शुरू हुआ। जो लोग क्रिमिनल्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को फर्दर प्रमोट कर रहे थे उन हैंडल्स में कुछ सिमिलैरिटीज थी। पहली सिमिलैरिटी कि उनके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स बड़े स्कैटर्ड थे और मोस्टली इंडिया से बाहर के थे। दूसरी सिमिलैरिटी कि वो आपस में ही एक दूसरे की पोस्ट को शेयर और लाइक करते थे। और तीसरी कि जीबीजी लिमिटेड कंपनी के अलावा उन्होंने बड़े ही रैंडम पोस्ट शेयर किए हुए थे। जाहिर सी बात थी कि ये बॉट अकाउंट्स थे। ये वो हैंडल्स होते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज लोगों के फेक प्रमोशंस के लिए यूज करती हैं। मैंने उन सारे हैंडल्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया जिन लोगों को इन बॉट अकाउंट्स ने पिछले 1-2 सालों में प्रमोट किया हो और वो इंडिया से ही हो और इन बॉट अकाउंट्स के अलावा हो। मैंने करीब 37 हैंडल्स निकाल लिए जो इंडिया के ही थे और बॉट हैंडल्स नहीं थे, लेकिन इन बॉट हैंडल्स अकाउंट्स के द्वारा बार बार प्रमोट किए गए थे। इससे ये बात सामने आई कि क्रिमिनल्स ने जिस मार्केटिंग कंपनी को अपने न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स प्रमोट करने का काम दिया था उसी कंपनी को इन 37 इंडियन लोगों ने भी अपने हैंडल्स को प्रमोट करने का काम दिया था। इसमें से कुछ तो सेलिब्रिटीज थे पर कुछ सामान्य लोग, मैंने ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे उनकी अलग लिस्ट बनाई। करीब 7 लोग निकलकर सामने आए। अब बारी थी इन 7 लोगों के बारे में हर चीज पता करने की। जब मैंने इन 7 लोगों के लिंक्डइन अकाउंट एनालाइज करना शुरू किए तो मेरी नजर एक प्रोफाइल पर जाकर अटक गई। ये एक लॉयर था, यंग लॉयर, लेकिन उसका प्रोफाइल इंप्रेसिव था। उसने अपने आप को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड दिखाया था, यहां तक कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में एडवाइजर भी, जबकि वो एजुकेशन वाइज एक अननोन सी यूनिवर्सिटी से LLB था। उसके एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से ये अचीवमेंट्स मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहे थे। मैंने उस लॉयर के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो उसके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए थे, आर्टिकल सोशल मीडिया पर प्रमोट भी किए गए थे। मैं उसके बारे में लिखी हुई हर एक न्यूज पोस्ट पढ़ता जा रहा था और कुछ सर्चेस के बाद मेरी नजर एक न्यूज पर अटक गई। उस न्यूज के हिसाब से इस लॉयर ने एक बड़ी IT फर्म को ब्लैकमेल किया था और कंपनी ने इस लॉयर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की थी जिसका कि कोर्ट में केस भी चल रहा था। यह इंसान क्रिमिनल हो सकता था। पर मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। मेरी एनालिसिस सिर्फ ये साबित करती थी कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लॉयर ने जिस एजेंसी को अपने डिजिटल मार्केटिंग का काम दिया था, उसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को उन क्रिमिनल्स ने भी अपने फेक हैंडल्स के प्रमोशन का काम दिया था। सिर्फ इस वजह से हम इस लॉयर को इस काम के लिए दोषी करार नहीं दे सकते थे। पर यह जानकारी भी काम की थी। मुझे लगा शायद मुकेश शाह इस जानकारी के हिसाब से इस लॉयर और अपनी कंपनी के बीच में कोई लिंक निकाल पाए। मैंने मुकेश जी को फोन लगाया और सारी फाइंडिंग्स उनसे शेयर कर दी। पर मुकेश जी इस लॉयर को जानते भी नहीं थे और उनके हिसाब से इस लॉयर का उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। पर मेरा दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। एक तो इस लॉयर का क्रिमिनल बैकग्राउंड और एक इसी तरह किसी कंपनी को ब्लैकमेल करने जैसा आरोप, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो सकता था। मैंने मुकेश जी से कहा कि क्या वो मुझे उन टॉप 20 लोगों के नाम दे सकते हैं जिन पर उन्हें शक हो, उनके ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर और घर के एड्रेस वगैरह सब कुछ। मुकेश जी ने कहा कि वो अभी एक मीटिंग में है और अपने दिल्ली के मैनेजर के थ्रू ये डिटेल्स मुझ तक भेज देंगे। इस बीच मैंने इस लॉयर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। इसके ऑफिस के एड्रेसेस, घर के एड्रेस, रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय डिटेल, सब कुछ। इसका एक ऑफिस दिल्ली के पड़पड़गंज में और एक रोहिणी में था। मैं अभी इसी कंफ्यूजन में था कि मुझे मुकेश जी का फोन आ गया। उन्होंने मुझे अपने मैनेजर का नंबर दिया और कहा कि मैं उससे सीधे कोऑर्डिनेट कर लूं। वो मुझे सारी डिटेल्स बंद लिफाफे में दे देगा। अभी शाम के 4 ही बजे थे और मुझे कनॉट प्लेस में एक मीटिंग के लिए निकलना था। फिर भी मैंने उस मैनेजर को फोन लगाया। उसने कहा, सर मैं आपको कहां आके मिलूं? आप अभी कहां हैं? मैंने उससे पूछा, आप अभी कहां हैं? उसने कहा, मैं तो सर अभी दिल्ली में हूं। मैंने कहा, मैं भी अभी दिल्ली के लिए ही निकल रहा हूं। आप दिल्ली में कहां हैं? मैं आपसे वहीं आके मिल लेता हूं। उसने कहा, मैं तो सर अभी पड़पड़गंज में हूं। पड़पड़गंज सुन के मेरा माथा एक पल को ठनका। मैंने कहा, मैं पड़पड़गंज ही आ रहा हूं, आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए। मैनेजर सतीश ने अपनी लोकेशन भेज दी और मैंने उसकी लोकेशन को तुरंत उस लॉयर की ऑफिस के एड्रेस की लोकेशन से मैच किया। दोनों के बीच में हार्डली 50 मीटर का अंतर था। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। मैंने तुरंत मुकेश शाह को फोन लगाया और कहा कि वो इसी वक्त मुझे होटल में आके मिले। मैंने मैनेजर सतीश को भी फोन करके होटल ही बुला लिया। अगले 40 मिनट में मैं और मुकेश शाह होटल की लॉबी में बैठे थे। मैंने मिस्टर शाह को बता दिया कि मेरा शक है कि आपका दिल्ली का मैनेजर वो इंसाइडर मोल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं और वो लॉयर इस मामले से डेफिनेटली जुड़ा है। थोड़ी ही देर में मैनेजर सतीश ने लॉबी में प्रवेश किया और वो मुकेश शाह को वहां देख के चौंक गया। मैंने मैनेजर सतीश से कहा, सतीश जी एक मिनट, मैं आपके फोन को यूज कर सकता हूं? मुझे कुछ ब्राउज करना है। एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा है और मुझे वेब चेक इन करना है। सतीश ने हिचकिचाते हुए अपना फोन अनलॉक किया और मुझे दे दिया। मैंने उसके फोन में सिर्फ व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री देखी और मुझे वो मालदीव का नंबर कॉल हिस्ट्री में मिल गया जो कि उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक था। कमाल की बात थी कि मैनेजर सतीश ने उस मालदीव के नंबर पर कई बार बात की थी। उस नंबर की चैट हिस्ट्री देखने पर यह साबित हो गया कि यह नंबर उस लॉयर का है और वही उसको यूज करता है और इसी नंबर को उसने उस जीमेल और फेक सोशल मीडिया हैंडल से लिंक भी किया हुआ था। मैनेजर सतीश के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपनी गलती मानने के। वो लॉयर और सतीश के अगेंस्ट FIR हुई और फ्रॉडस्टर्स के पकड़े जाने से मुकेश शाह की कंपनी को RBI ने भी रिलैक्सेशन दी और उनके खिलाफ लगाए बैन हटा दिए। फिलहाल आप सुन लीजिए कि ऐसे केसेस से सेफ कैसे रहें। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं DCP दिल्ली पुलिस मिस्टर दीपक यादव जी। सर कैसे हैं आप?
हाय अमित, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और रेड FM के सभी लिसनर्स सब लोग बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी हैं।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में कोई भी बिजनेस अपने आप को सेफ कैसे करे?
सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और सभी इम्पोर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी कंपनीज, सभी लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी। जो बात आपने कही, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मोटिवेटेड तरीके से कंपनी को कंपनी का कोई फायदा उठाने के लिए या उसको उसका नाम खराब करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। तो इसमें मेरी सलाह ये है कि आप एक प्रोएक्टिव तरीके से अपने सोशल मीडिया को मॉनिटर करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स और सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। इसमें से कुछ फ्री टूल्स भी हैं, जैसे फॉलोवर वॉन्क, हूटसुइट और सोशल मेंशन। इस तरह के वेबसाइट, इस तरह के ऐप्स हैं जिनसे आप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर सकते हैं। साथ में ही आप गूगल अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ छपती है तो वो आप तक पहुंच जाएगी, और फिर जैसा भी आप अपना जवाब है उसमें डाल सकते हैं। अगर जो इस तरह की जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कमेंट जो डाले गए हैं, अगर वो इस तरह के हैं कि वो क्रिमिनल नेचर के हैं, तो डेफिनेटली इन सब केसेस के अंदर पुलिस कार्रवाई भी करती है। एक मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपने जो कंपनी के वेबसाइट्स हैं सबको आप रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट कराइए। सिक्योरिटी ऑडिट कराने से इनका इनका सिक्योरिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होता है, और उससे हैकिंग टाइप की जो चीज़ें हैं जो कई बार देखने को मिलती हैं वो उसका होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
थैंक यू सो मच दीपक जी हमें ये अमेजिंग साइबर टिप देने के लिए। आप सुन रहे हैं हिडन फाइल्स 4.0, और आपके सवाल बहुत जरूरी हैं क्योंकि उनके जवाब आपको साइबर अटैक से सेफ रख सकते हैं। तो आज कौन पूछ रहा है अपने सवाल, आइए सुनते हैं।
हाय अमित जी, मैं शीतल बात कर रही हूँ। मुझे कंसर्न था, मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया है, उस पर मेरी ही डीपी लगी है, और अब मुझे डर है कि वो मेरे नाम से किसी के साथ फ्रॉड ना कर ले, और मुझे बस ये जानना है कि वो क्लोन अकाउंट में कैसे बंद करवा सकती हूँ। आप प्लीज मुझे हेल्प आउट कीजिए।
शीतल जी, सोशल मीडिया अकाउंट क्लोन हो जाना या आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाना बहुत आम समस्या है, और हर दिन हजारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए हर एक ऐप के अंदर प्रोविजन होता है, जहां प्रोफाइल पिक्चर होती है उसके बगल में तीन डॉट होते हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट कोई भी कर सकता है। यदि किसी प्रोफाइल या किसी पेज के बारे में 50 या 60 लोग रिपोर्ट कर दें तो वो अपने आप टेक डाउन हो जाता है, अपने आप रिमूव कर दिया जाता है। तो यदि आप ऐसा कोई प्रोफाइल मिले आपको जिसमें आपकी आइडेंटिटी चोरी हुई है या आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसको अपने दोस्तों से भी रिपोर्ट कराएं और खुद रिपोर्ट कर दें, वो प्रोफाइल अपने आप हट जाएगा, वो पेज रिमूव कर दिया जाएगा। यदि उसके बावजूद ये पेज रिमूव नहीं होता है तो फिर आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर, और वहां से एक रिक्वेस्ट फिर उस प्लेटफॉर्म को भेजी जाएगी और उसके बाद वो प्रोफाइल और या पेज हटा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं हमारा ये जवाब आपके काम आएगा, और आप लोगों की भी कोई साइबर क्वेरी है तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7531935935 पर पूछ लीजिए। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, और हिडन फाइल्स 4.0 का फीडबैक आप हमें रेड एफएम इंडिया के सोशल मीडिया के थ्रू और रूट 64 फाउंडेशन के पेज के थ्रू बता सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे मेरे हैंडल @cyberdubey पर ढूंढ सकते हैं, और ये सारी रियल लाइफ स्टोरीज आप रेड एफएम ओरिजिनल हिडन फाइल्स पॉडकास्ट पर सुन पाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक और थ्रिलिंग साइबर क्राइम केस के साथ। आप तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड सिक्योर, बजाते रहो
रेड एफएम। Hidden Files 4.0 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ।
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.